हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है।
हाँ, बिल्कुल।
एक तरह से सोचे तो हम ऊर्जा के एक ऐसे समंदर पर बैठे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही।
नहीं, अब ये एक हकीकत बनती जा रही है जिसका इस्तेमाल भविष्य को मतलब सस्टेनेबल तरीके से ऊर्जा देने के लिए किया जा सकता है।
बिल्कुल, और आज हम इसी ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति की गहराई में उतरेंगे।
और हम सिर्फ इसके सिद्धांतों पर बात नहीं करेंगे जो कि फैसिनेटिंग है ही, बल्कि हम जमीन पर उतरकर देखेंगे कि इसे हकीकत बनाने में क्या प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं
और उनके समाधान क्या हैं।
जी हाँ, और उनके क्या समाधान निकाले जा रहे हैं।
आज हमारी चर्चा ग्रीन हाइड्रोजन रिवॉल्यूशन पार्ट 2 नाम की एक ई बुक पर आधारित है, और ये किताब हमें लैब से आगे ले जाती है।
हाँ, मतलब लैब के एक्सपेरिमेंट से आगे सीधा फैक्ट्री फ्लोर, शिपिंग पोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट मीटिंग्स में।
मतलब इनोवेशन से लेकर असल इंडस्ट्रियल बदलाव तक का पूरा सफर।
तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि एक पूरी हाइड्रोजन इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए क्या क्या लगता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक,
और दुनिया भर में चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेकर उन्हें फंड करने के तरीकों तक, हर पहलू पर बात करेंगे।
बिल्कुल
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं, सुरक्षा।
हाँ,
हाइड्रोजन एक बिल्कुल साफ ईंधन है, जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है, लेकिन इसके कुछ गुण इसे बहुत खतरनाक भी बना सकते हैं।
जैसे कि
ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, मतलब आप इसे तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक बहुत देर न हो जाए।
और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ये गुण असल दुनिया में बहुत बड़े जोखिम पैदा करते हैं। किताब में एक बहुत दिलचस्प चीज का जिक्र है जिसे हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट कहते हैं।
एम्ब्रिटलमेंट, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब बहुत सरल और सच कहूं तो डरावना है। ये कुछ ऐसा है जैसे हाइड्रोजन धातु के अंदर घुसकर उसे धीरे धीरे
कमजोर कर देता है,
शीशे की तरह कमजोर और भंगुर बना देता है।
अच्छा, मतलब बाहर से पाइपलाइन या टैंक बिल्कुल ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर से वो किसी भी पल टूट सकता है।
एग्जैक्टली, बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से पूरा ढांचा खोखला हो रहा होता है।
और ये खतरा तब और बढ़ जाता होगा जब हम इसे स्टोर करने के तरीके पर गौर करते हैं।
बिल्कुल, हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए उसे 700 बार जैसे बहुत ही ज्यादा दबाव पर स्टोर किया जाता है।
700 बार
जी।
इसका अंदाजा कैसे लगाएं?
अंदाजा लगाने के लिए ये समुद्र में 7 किलोमीटर की गहराई के दबाव के बराबर है।
बापरे,
इतने ज्यादा प्रेशर पर एक छोटा सा लीक भी बहुत खतरनाक हो सकता है।
और ट्रांसपोर्टेशन का क्या, मतलब अगर हाइड्रोजन से भरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। टकराव की स्थिति में अगर टैंक फट जाए तो एक भयानक आग का गोला बन सकता है।
और क्योंकि हाइड्रोजन की लॉ अदृश्य होती है।
हाँ हाँ, इसकी लॉ लगभग अदृश्य होती है, जिसे दिन की रोशनी में देखना बहुत मुश्किल है। तो इतने सारे जोखिमों के साथ सवाल यह है कि इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाता है।
यही मेरा अगला सवाल था। चलिए, सेंसर्स और इमरजेंसी प्लान्स हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये वाकई में एक बड़ी दुर्घटना को रोक सकते हैं?
आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच में छिपा है।
अच्छा।
पहला लेयर है एडवांस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम इसे देख या सूंघ नहीं सकते, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स और लेजर आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं,
जो हवा में बहुत थोड़ी मात्रा का भी पता लगा सकते हैं।
हाँ, बहुत थोड़ी मात्रा का भी। ये सिस्टम खतरे के बढ़ने से बहुत पहले ही अलार्म बजा देते हैं।
ठीक है, ये हुआ पहला लेयर, और दूसरा?
दूसरा लेयर है मजबूत आपातकालीन योजना, जिन्हें हम ERPs कहते हैं। और ये सिर्फ कागज पर बने प्लान नहीं होते।
मतलब?
इनमें हर छोटी से छोटी चीज की तैयारी होती है। अगर लीक हो तो क्या करना है, आग लगे तो कौन से कदम उठाने हैं, और पूरे प्लांट को सुरक्षित रूप से कैसे खाली कराना है।
और इनकी प्रैक्टिस भी होती होगी?
बिल्कुल, इन प्लांट्स की नियमित रूप से ड्रिल की जाती है ताकि असल इमरजेंसी में कोई कंफ्यूजन ना हो।
और इन सबको एक साथ क्या बांधता है, मतलब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तो होगा?
हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानक, ISO और NFPA जैसे संगठन बहुत कड़े सुरक्षा कोड बनाते हैं। ये कोड किसी एक कंपनी या देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सेफ्टी बेंचमार्क तय करते हैं।
तो सुरक्षा के ये उपाय तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये ज्यादातर रिएक्टिव हैं, मतलब कुछ गलत होने पर काम आते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समस्या होने से पहले ही उसे रोक सकें?
बहुत अच्छा पॉइंट है, और यहीं पर डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री 4.0 का असली जादू शुरू होता है।
अच्छा,
हाइड्रोजन क्रांति सिर्फ एक ऊर्जा क्रांति नहीं है, ये एक डिजिटल क्रांति भी है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डिजिटल ट्विन्स का कॉन्सेप्ट।
डिजिटल ट्विन, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक वीडियो गेम जैसा कुछ महसूस होता है, क्या ये उतना ही इंटरैक्टिव है?
ये वीडियो गेम से कहीं ज्यादा है। ये किसी हाइड्रोजन प्लांट का एक जीता जागता हूबहू वर्चुअल मॉडल है जो रियल टाइम डेटा से जुड़ा होता है।
रियल टाइम मतलब जो असल प्लांट में हो रहा है वो इस मॉडल में भी दिखेगा?
पल पल ऑपरेटर इस वर्चुअल प्लांट में हर तरह के सिनेरियो को टेस्ट कर सकता है। एक बड़े तूफान का असर, एक अहम पंप का फेल होना या फिर एक साइबर अटैक।
ये सब वो एक सुरक्षित कंट्रोल्ड माहौल में कर सकते हैं बिना किसी असली खतरे के।
बिल्कुल, इससे उन्हें पता चलता है कि सिस्टम की कमजोरियां कहाँ हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए।
ये तो कमाल है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी का और क्या इस्तेमाल हो रहा है?
एक और कमाल की चीज है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल।
ब्लॉकचेन क्रिप्टो वाला?
हाँ, टेक्नोलॉजी वही है पर इस्तेमाल अलग है। इससे ये पक्का किया जा सकता है कि हम जो हाइड्रोजन खरीद रहे हैं वो सच में ग्रीन है या नहीं।
अच्छा, ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए।
एग्जैक्टली, आज ग्रीन वॉशिंग का बहुत बड़ा खतरा है, जहां कंपनियां दावा करती हैं कि उनका प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल है जबकि असल में ऐसा होता नहीं।
तो ब्लॉकचेन इसे कैसे रोकता है?
ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल बही खाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से बनता है तो उसे एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है जो ब्लॉकचेन पर दर्ज हो जाता है।
और फिर उसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है?
कोई भी, पूरी सप्लाई चेन में कोई धोखा नहीं हो सकता। ग्राहक को पता होता है कि वो असली ग्रीन हाइड्रोजन खरीद रहा है।
और AI और मशीन लर्निंग का भी इसमें कोई रोल है?
बिल्कुल, इनका इस्तेमाल होता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए,
भविष्य कहने वाले रखरखाव के लिए।
हाँ, AI सिस्टम लगातार प्लांट के उपकरणों से आ रहे डेटा जैसे कि वाइब्रेशन, तापमान, प्रेशर, इन सब का विश्लेषण करते हैं। वो किसी उपकरण के खराब होने के पैटर्न को पहचान सकते हैं
और हफ्तों पहले चेतावनी दे सकते हैं।
बिल्कुल, कल्पना कीजिए एक AI एक कंप्रेसर की वाइब्रेशन में एक ऐसा मामूली बदलाव पकड़ लेता है जिसे कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता और उसे फेल होने से एक हफ्ता पहले ही रिपेयर के लिए फ्लैग कर देता है।
ये सब सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक और सुरक्षित लगता है, लेकिन जैसे जैसे सब कुछ डिजिटल और कनेक्टेड होता जा रहा है, एक नया खतरा भी तो पैदा हो रहा है साइबर सुरक्षा का।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, ये डरावना है। मतलब एक हैकर हजारों मील दूर बैठकर एक पूरे शहर की एनर्जी सप्लाई को खतरे में डाल सकता है।
और जैसे जैसे ये सिस्टम ज्यादा जुड़ते जाते हैं वो साइबर हमलों के प्रति उतने ही
संवेदनशील हो जाते हैं। एक सफल साइबर अटैक न केवल प्लांट को बंद कर सकता है बल्कि एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना का कारण भी बन सकता है।
तो इन डिजिटल सिस्टम्स को सुरक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना कि भौतिक पाइपलाइनों को।
ये सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है।
चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। इन सब चुनौतियों के बावजूद किताब में कुछ ऐसी अद्भुत उभरती हुई तकनीकों का जिक्र है जो हाइड्रोजन को न केवल ज्यादा सुरक्षित बल्कि ज्यादा सस्ता और सुलभ भी बनाएंगी।
हाँ, और इसमें सबसे आगे है उन्नत इलेक्ट्रोलाइजर सामग्री पर हो रहा काम।
इलेक्ट्रोलाइजर मतलब वो मशीनें जो पानी से हाइड्रोजन बनाती हैं?
जी, अभी इनमें प्लैटिनम जैसी बहुत महंगी धातुओं का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक ऐसी नई सामग्री विकसित कर रहे हैं जो सस्ती भी हों और ज्यादा कुशल भी।
अगर वो सफल हो गए तो ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत अपने आप बहुत नीचे आ जाएगी।
बिल्कुल।
एक और टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र है, फोटो कैटलिटिक वाटर स्प्लिटिंग। इसे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण भी कहा गया है।
हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है
और है भी वैसा ही क्रांतिकारी। माने पर काम करने लगी तो हमें हाइड्रोजन बनाने के लिए बड़े बड़े सोलर फार्म्स या विंड टर्बाइन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम सीधे धूप से ईंधन बना पाएंगे।
ये सुनने में तो अद्भुत है, लेकिन हम इसे हकीकत में बदलने से कितनी दूर है? क्या ये 10 साल का सपना है या 50 साल का?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी ये तकनीक लैब में तो काम कर रही है लेकिन इसे कमर्शियल स्केल पर लाने में शायद 15 से 20 साल लग सकते हैं।
अच्छा।
इसकी कुशलता अभी भी एक चुनौती है लेकिन जिस तेजी से इस पर रिसर्च हो रही है ये भविष्य का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है।
और ये सब सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में विशाल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो दिखाते हैं कि यह क्रांति बस आने वाली नहीं बल्कि
शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल, यूरोप में हाइड्रोजन वैली बन रही हैं।
हाइड्रोजन वैली, ये ऐसे इलाके हैं जहां एक ही जगह पर हाइड्रोजन बनाया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर
वहीं की इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर लिया जाता है।
इससे एक लोकल हाइड्रोजन इकोनॉमी बनती है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है।
और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो और भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे सऊदी अरब का नियोम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट।
वो तो बहुत ही बड़ा है। किताब में लिखा है कि ये हर दिन 650 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा।
650 टन हर दिन? ये कितना होता है?
इसे समझने के लिए ये मात्रा हजारों भारी ट्रकों को एक साल तक चलाने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बदलने की क्षमता रखता है।
और ऑस्ट्रेलिया का भी एक प्रोजेक्ट है।
हाँ, एशियन रिन्यूएबल एनर्जी हब ARECH, ये दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक होगा।
लेकिन इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सब कुछ अच्छा ही तो नहीं चल रहा होगा, कुछ चुनौतियां भी होंगी।
बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं। नियोम जैसे प्रोजेक्ट के लिए जो रेगिस्तान में बन रहा है, पानी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
अच्छा, हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी तो चाहिए।
हाँ, और उन्हें समुद्र के पानी को डीसैलिनेट करना पड़ता है जिसमें बहुत ऊर्जा लगती है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्याएं, स्किल्ड लेबर की कमी
और कभी कभी स्थानीय राजनीतिक अस्थिरता भी।
जी हाँ, ये सब इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को धीमा कर देती हैं।
तो इतनी सारी तकनीकें, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये सब सुनने में अविश्वसनीय रूप से महंगा लगता है। सवाल ये है कि इस क्रांति के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? किताब में एक उदाहरण है कि सिर्फ एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में $31.5 मिलियन लग सकते हैं।
ये तो बहुत बड़ी रकम है।
तो पैसा कहाँ से आ रहा है?
और यही पर फिनांस की दुनिया में भी इनोवेशन हो रहा है। पारंपरिक लोन के अलावा कुछ नए और दिलचस्प तरीके सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं ग्रीन बॉन्ड्स।
ग्रीन बॉन्ड्स?
जी, ये एक तरह के लोन होते हैं जो खास तौर पर पर्यावरण के लिए फायदेमंद प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाते हैं, और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इनके लिए परफेक्ट हैं।
ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन ग्रीन बॉन्ड्स में सच में उतना रिटर्न है कि बड़े निवेशक आकर्षित हों?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असल में ये बॉन्ड्स काफी आकर्षक हो सकते हैं, क्योंकि जिन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को ये फंड करते हैं उनके पास अक्सर सरकारों के साथ 20-25 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
अच्छा, तो इससे निवेशकों का जोखिम कम हो जाता है।
बिल्कुल, और उन्हें एक स्थिर रिटर्न का भरोसा मिलता है। तो ये सिर्फ फील गुड नहीं है बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी है।
और नए स्टार्टअप्स का क्या, जो नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है?
उनके लिए वेंचर कैपिटल यानी VC।
हाँ, VC फर्म्स।
VC फर्में उन हाइड्रोजन स्टार्टअप्स में पैसा लगा रही हैं जो किसी नई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये फर्में ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार रहती हैं,
इस उम्मीद में कि अगर टेक्नोलॉजी सफल हुई तो भविष्य में बहुत बड़ा मुनाफा होगा।
Exactly. यही VC फंडिंग इनोवेशन की आग को जलाए रखती है।
और फिर है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल।
हाँ, ये मॉडल बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है। इसमें सरकारें और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं।
सरकारें जमीन, परमिट जैसी चीजें देती हैं और निजी कंपनियां पैसा और टेक्नोलॉजी लाती हैं।
बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जापान हाइड्रोजन एनर्जी सप्लाई चेन यानी HSC प्रोजेक्ट इसका एक शानदार उदाहरण है, जहाँ दोनों देशों की सरकारें और कई बड़ी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं।
तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक सफल हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए टेक्नोलॉजी, सरकार और प्राइवेट फाइनेंस, इन तीनों का साथ आना जरूरी है?
बिल्कुल, इन तीनों के बिना ये क्रांति संभव ही नहीं है।
सरकारें पॉलिसी बनाकर रास्ता दिखाती हैं,
प्राइवेट सेक्टर पैसा और इनोवेशन लाता है, और टेक्नोलॉजी उसे हकीकत में बदलती है। इन तीनों के बीच का तालमेल ही इसकी सफलता की कुंजी है।
तो आज की बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति अब सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये सुरक्षा प्रोटोकॉल, डिजिटल इनोवेशन, वैश्विक सहयोग और नए फाइनेंसिंग मॉडल्स के जरिए एक ठोस हकीकत बन रही है। हमने देखा कि कैसे लैब के आइडियाज को असल दुनिया में उतारा जा रहा है।
बिल्कुल,
ये किताब हमें एक बहुत विस्तृत रोडमैप दिखाती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है।
बताइए।
जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे पावर ग्रिड, हमारी गाड़ियों और हमारे शहरों का हिस्सा बनती जाएगी, शायद सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी या वित्तीय नहीं होगी।
तो फिर क्या होगी?
सबसे बड़ी चुनौती होगी गवर्नेंस की।
गवर्नेंस?
एक वैश्विक समाज के रूप में हम इस नई ऊर्जा प्रणाली का शासन कैसे करते हैं? हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसका फायदा कुछ अमीर देशों तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि ये सभी के लिए स्थायी और न्याय संगत हो? हाइड्रोजन से चलने वाली इस नई दुनिया के लिए हमें किन नए नियमों, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी?
हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।